The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली. पार्ट टू. बेसिल और लॉर्ड हेनरी उस तब्दीली से खुश थे जो डोरियन मोहब्बत के एहसास से महसूस कर रहा था. खुशगवार और खूबसूरत एहसास. जबकि डोरियन ग्रे ने कहा, सिबिल वेन का मुझ पर यकीन मुझे उसके लिए खलूस का एहसास दिलाता है. और लॉर्ड हेनरी, मुझे अफसोस होता है कि मैंने तुमसे गलत चीजें सीखी. अब मैं तब्दीली महसूस करता हूँ. मैं अपनी मोहब्बत सिबिल वेन का हाथ अपने हाथ में लेता हूँ तो तुम्हारी तमाम झूठी, दिल लुभाने वाली, जहरीली और खूबसूरत सब बातें भूल जाता हूँ. और वो सब बातें क्या हैं? लॉर्ड हेनरी ने पूछा. सब बातें जिंदगी, मोहब्बत, मजे लूटने से मुतालिक और दूसरी बहुत सी बातें. लॉर्ड हेनरी बोला, जिंदगी के मजे उड़ाना ही वाहिद अहम बात करार दी जा सकती है. मगर ये हकीकत में मेरी बात नहीं बल्कि कुदरत का कानून है. नेचर यही चाहती है, मैं साबित कर सकता हूँ. व्हेन वी आर हैप्पी वी आर ऑलवेज गुड, बट व्हेन वी आर गुड वी आर नॉट ऑलवेज हैप्पी. खुशी और मुसरत के एहसास से हम अच्छा महसूस करते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि हम अच्छा महसूस करें तो खुश भी हों. और गुड का मतलब इंसान की अपनी जात से इत्मीनान और हम आहंगी है, क्योंकि उसकी अपनी जात ही अहमियत की हामिल है. और ये मुतसादिम है कि हमें मजबूर किया जाए कि दूसरों के साथ हम आहंग हों और उनके तौर तरीके और सोच अपनाएं. दूसरी तरफ सिबिल वेन की खूबसूरती की तारीफ तो हर कोई कर रहा था. खूबसूरत लड़की, बुरी अदाकारा. सिबिल वेन ने बहुत ही खराब अदाकारी की, मगर डोरियन की मुरव्वत में दोस्तों ने कुछ ना कहा. डोरियन खुद भी हैरान था और शर्मिंदगी महसूस कर रहा था. सिबिल वेन फेल हो चुकी थी. हर आदमी परेशान और बोर हो गया, मगर सिबिल वेन पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था. दूसरे एक्ट के बाद लॉर्ड हेनरी की हिम्मत जवाब दे गई. माय डियर डोरियन, मेरा ख्याल है मिस वेन आज बीमार हैं. बेसिल ने कहा, कोई बात नहीं, हम किसी और दिन आ जाएंगे. डोरियन बोला, नहीं, बीमार नहीं, कल की ग्रेट आर्टिस्ट आज की गंदी अदाकारा बन चुकी है. ऐसा ना कहो, तुम उससे मोहब्बत करते हो और मोहब्बत आर्ट से बढ़तर है. वो चले गए, बल्कि आधे से ज्यादा तमाशाई चले गए. डोरियन को परेशानी में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे. ड्रामा खत्म हुआ. डोरियन, कितनी खराब एक्टिंग की मैंने आज. हाँ, बहुत ही खराब. तुम्हें तो इल्म होना चाहिए था खराब एक्टिंग की वजह क्या है.
नहीं, मुझे इल्म नहीं.
डोरियन, डोरियन, तुमसे मिलने से पहले मैं ख्याल करती थी कि एक्टिंग ही जिंदगी की हकीकत है. मैं थिएटर और एक्टिंग को ही हकीकत ख्याल करती थी. एक रात को मैं एक किरदार की हीरोइन होती तो दूसरी रात दूसरे किरदार की. मैं उनके साथ खुश होती और उनके साथ ही उदास. यही मेरी दुनिया थी. मगर वो तो साए थे जिन्हें मैं हकीकत समझती रही. फिर तुम आ गए, ओ माय ब्यूटीफुल लव, जिसने मेरी रूह को इन मामूली चीजों से आजाद करवाया. तुमने बताया कि सच्चाई क्या है. सो आज रात मुझे ये चीजें, ये किरदार बहुत ही मसनूई लगे. जूलियट का किरदार, चांद की रोशनी, मंजर, मैं जो अल्फाज बोल रही थी, सब मसनूई और गैर हकीकी थे. तुमने मुझ में इन चीजों से ज्यादा बुलंदतर एहसास पैदा किया और मैंने महसूस कर लिया कि ऑल आर्ट इज बट अ रिफ्लेक्शन. हकीकी मोहब्बत क्या है? ड्रामे की कठपुतलियों से मेरा क्या लेना देना? मैंने असल खुशी महसूस की और जब लोगों ने बातें बनाई कि अदाकारी खराब है तो मैं हंसी. मेरी रूह में मोहब्बत का एहसास पैदा हो गया है. डोरियन, मुझे ऐसी जगह ले जाओ जहाँ सिर्फ हम दोनों हों. दरअसल वो अदाकारा से हकीकी औरत में तब्दील हो चुकी थी. मगर डोरियन कुछ और ही कह रहा था. ये तुम्हारी अदाकारी थी जिससे मैंने मोहब्बत की. तुमने तो मेरी मोहब्बत को कत्ल कर दिया. चली जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता. जाओ, चली जाओ. मेरी मोहब्बत का मजाक ना उड़ाओ, मैं मर जाऊंगी. वो चला गया और आवारा गर्दी करता रहा. घर पहुंचकर वो हैरान हुआ क्योंकि तस्वीर कुछ बदल चुकी थी, अगरचे खुद वो बिल्कुल पहले जैसा ही था.
कहीं मेरी ख्वाहिश कबूल तो नहीं हो गई कि तस्वीर बूढ़ी हो जाए और मैं जवान रहूं।
उसे सिबिल वेन का ख्याल आया, मैंने उसके साथ गलत सलूक किया। तस्वीर में उसका चेहरा किस कदर जालिम और बेरहम नजर आ रहा था।
क्या ये मेरी असल सूरत है? क्या मैंने सिबिल वेन के साथ बेरहमी की जो इस तस्वीर में नजर आ रही है?
क्या मुझे सिबिल वेन से ये सलूक नहीं करना चाहिए था?
मुझे उससे ही शादी करनी चाहिए।
कुछ देर बाद उसने दोबारा तस्वीर देखी जो वाकई तब्दील हो चुकी थी। डोरियन अपने इस अजीब तासुरात वाले चेहरे को देखकर शर्मिंदा था कि उसकी असल शख्सियत ऐसी अजीब है। नहीं सिबिल वेन, नहीं, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मगर उसी वक्त लॉर्ड हेनरी आया और बताया कि सिबिल वेन ने थिएटर में खुदकशी कर ली।
मगर तुम्हारा इसमें कसूर नहीं।
मेरा कसूर क्यों नहीं? मैंने उसका दिल तोड़ा और उसकी खुदकशी की वजह बना। मैं मुजरिम हूं। सर हेनरी ने अल्फाज का जादू चलाया।
वो तुम्हारे लिए अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकती थी। तुम जल्द ही उसे उकता जाते और फिर देखते कि वो दूसरे आदमियों में दिलचस्पी ले रही है। देखो, मैंने भी बहुत सी औरतों से मोहब्बत की। तुम समझो, मोहब्बत की एक कहानी थी जो खत्म हुई। जिस तरह जूलियट की कहानी थी, उसी तरह सिबिल की जिसका अख्तिताम हुआ। अब भूल जाओ।
ठीक है, डोरियन बोला, अगरचे तुमने मुझे जिंदगी का सलीका सिखाया, मगर हम इस मौजू पर अब कभी भी बात नहीं करेंगे। लॉर्ड हेनरी के जाने के बाद वो अपनी तस्वीर जो बदसूरत और ना मेहरबान थी उसे देख रहा था।
जिंदगी का ये भी रुख है। ठीक है, ऐसा तो ऐसा ही सही।
तस्वीर बूढ़ी और बदसूरत होगी और मैं खूबसूरत ही रहूंगा। खूबसूरत रहूंगा और हर हर लम्हा उससे लुत्फ अंदोज होऊंगा। दूसरे दिन बेजल ने डोरियन से सिबिल के दुनिया से गुजर जाने का अफसोस किया, मगर डोरियन तो सब कुछ भूल चुका था और ताजियत के बजाय जिंदा दिली की बातें करना चाहता था। माजी की तलखियों से हाल खराब करना बेवकूफी है। सिबिल वेन कल की बात थी, उसे मैं भूल चुका हूँ। बेजल समझ चुका था कि अब डोरियन एक मुख्तलिफ इंसान है जो पहले की तरह मासूम नहीं। डोरियन ने उसकी ये दावत भी ठुकरा दी कि एक और तस्वीर बनवाए, बल्कि उसे अपनी पुरानी तस्वीर भी दिखाने से इनकार कर दिया। बेजल ने बिलाखिर उसे बता ही दिया कि डोरियन और उसकी तस्वीर उसके लिए बेहद अहमियत रखती है। डोरियन की वजह से ही उसके फन को पुख्तगी मिली और उस तस्वीर में बेजल ने अपने ख्यालात, जज्बात और शख्सियत को मुंतकिल कर दिया है और अब ख्वाहिश है कि उसे देखे।
कुछ भी हो, मैं वो तस्वीर नहीं दिखा सकता।
बेजल मायूस वापस चला गया। डोरियन ने तस्वीर छुपा दी और उस किताब येलो बुक से लुत्फंदोज होने लगा जिसमें एक आदमी जिंदगी के मजे लूटता रहा हर जायज नाजायज तरीके से। ये किताब इब्तदा में बुरी और खौफनाक लगी और उसने लॉर्ड हेनरी से यहां तक कह दिया कि उसे किसी दूसरे इंसान को ना दे, ये बुरे असरात पैदा करती है। मगर साल गुजरते रहे और किताब दिलचस्प लगने लगी, बल्कि डोरियन को उसके हीरो में अपनी ही झलक नजर आने लगी। साल गुजरते गए, तस्वीर बूढ़ी और भयानक होती गई। डोरियन को इस राज का पता था, वो जाता और उसे देखता। डोरियन खूबसूरत ही रहा, मगर उसकी रूह हर जायज नाजायज तरीके से मजे लूटने पर इसरार करती। दुनिया भर की आसाइशें उसने घर में जमा की, हर हर दिन अय्याशी में गुजारा। कुछ लोगों ने शक भी किया कि कुछ ना कुछ गलत और पुरिसरार जरूर है, मगर उसके खूबसूरत चेहरे और दावतों के सामने किसी ने जुबान ना खोली। अगरचे दरमियान में ये भी कहा गया कि ये शख्स बुरा इंसान है जो रात को खराब जगहों पर नजर आता है और लड़ाइयां करता है, और घर से जब गायब होता है तो बुरे लोग उसके दोस्त होते हैं और नेक दुश्मन, मगर फिर उसके चेहरे और दौलत उसकी खामियां छुपा लेती। खुद डोरियन को मालूम ना था कि तस्वीर से मोहब्बत करे या नफरत, हर वक्त ये फिक्र के कोई उसे देख ना ले। तस्वीर नाकाबले यकीन हद तक भयानक हो चुकी थी। वक्त गुजरता रहा और वो 38 साल का हो गया। बेजल उसे मिला। मैं बाहर जा रहा हूँ काफी अरसे के लिए, और बताया कि लोग डोरियन के बारे में बुरी बातें कर रहे हैं। कभी तुम्हारी कितनी तारीफ की जाती थी।
डोरियन बोला, उनकी जिंदगी उनके साथ और मेरी मेरे साथ।
वो अब गुस्से में था। ठीक है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हकीकत क्या है, मेरा राज क्या है, शैतानी राज। ये देखो ये तस्वीर।
बेजल ने भयानक तस्वीर देखकर चीख मारी, डोरियन ये तुम नहीं हो सकते, ये मेरी बनाई हुई तस्वीर नहीं हो सकती। मगर उस पर बेजल ने अपने दस्तखत देख लिए। ये किस तरह हो गया, ये शैतानी काम है। याद करो मैंने उस वक्त जो ख्वाहिश की थी वो कबूल हो गई, तस्वीर बूढ़ी हो गई और मैं जवान रहा, और मैंने जो कहा था कि तस्वीर तबाह कर दी है वो झूठ था। सच तो ये है कि तस्वीर ने मुझे तबाह कर दिया है, ये शैतानी काम है। तुम्हारी रूह की अगर ये तस्वीर है तो किस कदर भयानक है। बेजल कह रहा था कि खुदा से माफी मांगो, मगर डोरियन सोच रहा था कि ये शख्स अगर तस्वीर ना बनाता तो ये मुसीबतें भी ना आती, और इसी सोच में बेजल को चाकू से कत्ल कर दिया। अब ये राज दोबारा राज ही रहेगा, वो परेशान नहीं था। इस लाश को कहाँ छुपाऊं? हाँ, एलन कैम्बल, वो मेरा दोस्त है और केमिकल से लाश को ठिकाने लगा सकता है। कैम्पबेल ये काम ना करना चाहता था, मगर ब्लैकमेलिंग करके डोरियन ने उसे ये काम करने पर मजबूर कर दिया। अब डोरियन की तस्वीर में एक हाथ ऐसे नजर आ रहा था जैसे उसने कत्ल किया हो। ये चीज तो तस्वीर की बदसूरती से भी ज्यादा भयानक थी। फिर एक दिन जब जहन में बहुत परेशानी थी, वो नशे के लिए शहर से बाहर एक शराब खाने में गया। एक औरत ने उसे पहचान लिया। तुम प्रिंस चार्मिंग हो ना? एक आदमी ने ये अल्फाज सुने और डोरियन का पीछा करने लगा, जो औरत के अल्फाज सुनकर बाहर जा रहा था। आदमी पिस्तौल से डोरियन को मारने वाला था। तुमने सिबिल वेन को कत्ल किया, वो तुम्हें प्रिंस चार्मिंग कहती थी ना, मैं तुम्हारी तलाश में था। वो कौन थी, कब मरी? 18 साल पहले। मेरे चेहरे को देखो, क्या मैं 20 साल से ज्यादा लगता हूँ? आदमी ने चेहरा देखा और डोरियन को छोड़ दिया। एक औरत ने जेम्स वेन को कहा, ये शैतान है और शैतानों के चेहरे तब्दील नहीं होते, यही तुम्हारी बहन का कातिल है। डोरियन बहुत दूर जा चुका था, मगर वो महसूस कर रहा था कि जेम्स को उसका पता चल चुका है और वो उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो घर से कम बाहर निकलता। फिर एक रोज शिकार के लिए वो दोस्तों के साथ गया। एक आदमी ने फायर किया, मगर जानवर के साथ एक आदमी भी मारा गया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लॉर्ड हेनरी ने उसे तसल्ली दी कि इसमें डोरियन का कोई कसूर नहीं, मगर ये जानकर डोरियन को तसल्ली हुई कि मरने वाला जेम्स वेन ही था। डोरियन ने हेनरी से बात की कि अब वो एक नई जिंदगी का आगाज करेगा। एक लड़की से उसकी दोस्ती हो रही थी, मगर उसने इनकार कर दिया, ये उसकी जिंदगी की इब्तदा है। तुमने भलाई नहीं की, उसका दिल तोड़ा है। हेनरी ने बताया कि बेजल के कातलों की तलाश की जा रही है। एलन कैम्पबेल ने खुदकशी कर ली है और खुद उसकी बीवी फरार हो चुकी है। खैर, मुझे कोई परवाह नहीं बेजल का क्या हुआ, मगर उसकी तस्वीर कहाँ है जो तुम्हारी उसने बनाई थी? और हाँ, तुम अपने जवान रहने का राज भी तो मुझे बताओ। हम में यही कोई 10 साल का फर्क है, मगर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और तुम वैसे के वैसे। वहां से जाने के बाद डोरियन सोच रहा था कि खूबसूरत शक्ल के बदले बदसूरत रूह और गुनाह की जिंदगी बुरा सौदा था जो उसने किया। कितने लोग उसकी वजह से मरे, कितनी जिंदगियां उसने खराब की। उसने हैटी के बारे में सोचा, मैंने उसकी जिंदगी खराब होने से बचाई और नेक रास्ते पर चलने का ख्वाहिशमंद हूं। हाँ, शायद तस्वीर मेरी सोच के तब्दील होने पर अच्छी हो गई हो। लैंप उठाया और ऊपर के कमरे में जहां तस्वीर छुपाई गई थी गया। तस्वीर ठीक हो गई तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। कमरे में दाखिल होकर उसने अंदर से ताला लगाया, जो कि उसकी आदत थी। तस्वीर से कपड़ा हटाया और चीख मारी, जिसमें तकलीफ और मायूसी शामिल थी। तस्वीर में तब्दीली सिर्फ ये हुई थी कि मुनाफकत और अय्यारी और नुमाया हो चुकी थी और अब भी काबिले नफरत ही थी। हाथ में सुर्ख खून की बूंदें गहरी हो चुकी थी, पैर पर भी खून के निशान थे। क्या मुझे कत्ल का इकरार कर लेना चाहिए और फांसी की सजा कबूल कर लेनी चाहिए? वो हंसा, ये मुमकिन नहीं। लोग इस बात को यह कहकर मानने से इनकार कर देंगे कि मैं पागल हो चुका हूँ। कुछ भी हो, जुर्म का इकरार करके उसका अजाला करना चाहिए, अगरचे लोग बुरा भला कहेंगे, मगर खुदा ने भी यही हुक्म दिया है। और इकरार तक गुनाह भी माफ ना होंगे। ना, कभी नहीं, कभी इकरार नहीं करूंगा। मेरे खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं? सिर्फ ये तस्वीर ही तो सबूत है, इसे इतने दिन क्यों हिफाजत से रखा मैंने, ये तो सबसे पहले तबाह कर देनी चाहिए थी। इब्तदा में इसकी तब्दीली से लुत्फ जरूर मिलता था, मगर वो तो कब का कर्ब तकलीफ में बदल चुका है। दिन रात खौफ रहता है, न जाने कौन कब इस भेद से आगाह हो जाए। मेरा जमीर तस्वीर में नजर आता है और तस्वीर को खत्म करना ही पड़ेगा। उसने चाकू उठाया, जिस तरह तस्वीर के बनाने वाले को कत्ल किया, इसी तरह ये भी कत्ल होगी। और फिर माजी के कत्ल होने पर वो फिक्र तकलीफ से आजाद होगा। मैं इसे तबाह कर दूंगा। डॉरियन ग्रे ने चाकू उठाया और तस्वीर के दिल में उतार दिया। चीख की आवाज सुनाई दी। मुलाजिम भी परेशान थे। वो अंदर गए जहां डॉरियन ग्रे की खूबसूरत तस्वीर मौजूद थी और एक लाश, भयानक और बदसूरत शख्स की लाश जिसके सीने में चाकू घुसा हुआ था। तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली। www.server555.com